तो इज्जतें किसी के रंग से, किसी के पैसे से, किसी की चीजों से नहीं होती। इज्जत वो है जिसको अल्लाह इज्जत दे दे, और जिसको अल्लाह जलील कर दे, जो उसके यहां जलील हो गया ना, वो चाहे जितने भी पैसे वाला हो। फिरौन को देख ले, कुछ किसी ने कभी अपने बच्चे का नाम प्यार से फिरौन रखा, नमरूद रखा? बड़ी बड़ी बादशाह थे, इनको मिली, रखना चाहिए था, क्यों नहीं रखा? इसलिए कि इनको इज्जत नहीं मिली, इनको जिल्लत मिली। इतना कुछ हो के भी इनको जलील होना पड़ा दुनिया में। तो इज्जत और जिल्लत अल्लाह की नजर में देखो कि अल्लाह की नजर में किसको इज्जत मिलती है, वही इज्जत वाला है। और नहीं मिली मालिक की नजर में, नहीं मिली तो वो जलील है। तो देखना फिर क्या है हमें कि मालिक मुझे कैसा देख रहा है, मालिक की नजर में मैं कैसी हूं। अगर कोई दो चार आपको बातें सुना देता है, उस पर रोने ना बैठ जाए, आए मैं तो जलील हो गई, हाय मेरी तो इंसल्ट हो गई। नहीं, इंसल्ट नहीं हुई, अपने आप को अल्लाह की नजर में देखें। पैगंबरों को इतनी बातें सुनाई गई, अल्लाह माफ करे, नाउजु बिल्ला, क्या उनकी इज्जत में कोई कमी आ गई? नहीं। नूह अलैहिस्सलाम को मार मार के इतना मारते थे, इतना मारते थे लोग, कि वो बेहोश होके गिर पड़ते थे तो उठा के उनको उनके घर के आगे फेंक जाते थे। तो आप इससे अंदाजा लगाएं। अब देखने वाला क्या कहेगा, क्या इसमें जिल्लत है? नहीं। नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगंबरों में से है। तो याद रखिए, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाँ देखिए। इसीलिए दुआ किया करें, अल्लाह जमीन के ऊपर जब तक रखना तो इज्जत से रखना, और जमीन के नीचे भी इज्जत से ही लेके जाना, क्योंकि तेरे पास है सारी इज्जत। अल्लाह ताला देखे हमारे ईमान को ना, जो खोल खोल के सामने रख देता है, देखो चेक करो अपने ईमान को, किधर तुम इज्जतें तलाश करते हो, किन की तरफ देखते हो इज्जतों के लिए? अल्लाह की मशीयत से मिलती है ये, उससे मांगो ना, उसकी इजाजत के बगैर किसी को नहीं मिल सकती। चाहे आपको 100% लग रहा हो कि फलां मुझे देगा, नहीं, कोई नहीं दे सकता। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, तूलिजुल लैला फिन नहार, तू दाखिल करता है रात को दिन में। इतनी बड़ी कायनात में एक चेंज आती है, ये जो रात दिन में दाखिल हो रही है, यानी दिन घट रहा है रात बढ़ रही है, और फिर तूलिजुल नहारा फिल लैल, तू दाखिल करता है दिन को रात में। हर रोज ये चेंज आ रहा है ना, रोशनी अंधेरे में बदल रही है, और अंधेरा बिल्कुल स्याह अंधेरा है। कभी कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि इतने काले स्याह आसमान के ऊपर कभी सफेदी हो सकती, काला कपड़ा भी आपने सफेद करना हो बड़ा मुश्किल है, स्याह काला कपड़ा, और ये इतना बड़ा आसमान उसके लिए मुश्किल नहीं है। ये इतनी बड़ी चेंज लेकर आ जाता है, कहीं दिन घट रहा है और रात बढ़ रही है, आगे बढ़ते बढ़ते दिन को टेक ओवर कर लेती है, कहीं दिन बढ़ रहा है रात को टेक ओवर कर लेता है, कवर कर लेता है, रात खत्म हो जाती है। जब दिन और रात तुम चेंज ये देखते हो तो तुम्हें किसी की मिल्कियत महसूस होती है? हाँ, कुछ महसूस होता है कि इतनी बड़ी चेंज कौन लेकर आ रहा है, इतने वास्ट वास्ट एरिया पे रोशनी को अंधेरे में कौन चेंज कर रहा है? हाँ, वही तो खुदा है, वही तो अल्लाह है। और किसी का इस पे इख्तियार नहीं है, हम इसको काबू कर सकते हैं? कहीं हमारा दिन पे इख्तियार है ना? दिन पे है ना रात पे है। कई दिन ऐसे होते हैं देखें कि इंसान चाहता है ये दिन लंबे हो जाए, ठहर जाए, कभी ना गुजरे, मगर वो दिन भी गुजर जाता है। और कई दिन और रात ऐसे होते हैं कि दिल चाहता है ये वक्त जल्दी से चला जाए, मगर वो अपनी रफ्तार पे ही चलते रहते हैं। इसी तरह कोई चाहता है मैं अपनी रात को बढ़ा लूं तो नहीं बढ़ा सकता, कोई चाहता है मैं अपना दिन छोटा कर दूं, नहीं कर सकता, सब अल्लाह के इख्तियार में। तो तुम ये देखते हो, ये इतनी बड़ी चेंज जो कायनात में आ रही है, साइंस ने इतनी तरक्की कर रही है, वो दिन और रात को चेंज नहीं कर सके? कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिन के बाद दिन ही आ जाए? तो जो अल्लाह इतनी बड़ी चेंज ला सकता है ना, उसके लिए क्या मुश्किल है कि किसी को बादशाहत दे दे या किसी से पल भर में छीन ले, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। चाहे ये किसी इंडिविजुअल के लिए हो या पूरी पूरी कौमें हैं, अल्लाह ताला किसी कौम को उरूज दे देता है, किसी को जवाल दे देता है। आपको नहीं पता, किसी को आज इज्जत मिल रही है तो कल को उसको जिल्लत मिल जाए। बड़ी बड़ी एम्पायर्स आपने दुनिया में देखे, बड़े बड़े कौमें आई जिनको अरूज मिला, उसके बाद वो कैसे जवाल पजीर हुई, और कई हैं जो जवाल पे थी वो कैसे उठी। फिर आप ये बताइए, अगर ऐसा ही हो रहा है जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, कोई आज ऊपर है तो कल नीचे है, कोई कल नीचे था तो आज ऊपर है, तो फिर ये मुझे बताएं, हम किसी भी नेमत पे, किसी भी मुल्क जो हमें मिला हुआ है, कोई भी हमें कहीं पावर मिली हुई है, क्या अब हम कभी उसको परमानेंट समझ सकते हैं? कभी उसके ऊपर फूल सकते हैं? कभी उस पर अकड़ सकते हैं? कभी उसको हमेशा के लिए अपनी मिल्कियत समझ सकते हैं कि बस मेरा ही है और किसी और को नहीं मिल सकता, बस अब मैं ही हूं, मैं ही मैं हूं? नहीं, दिन के बाद रात भी आ जाती है, याद रखिएगा। और क्या कभी ऐसे होना चाहिए कि किसी के ऊपर गम है, परेशानी है, तो वो मायूस हो जाए, हाय अब तो कभी मेरे दिन बदलेंगे ही नहीं, अब तो कभी कुछ होगा ही नहीं? नहीं, रात के बाद दिन भी आता है, अल्लाह गम के बाद खुशी लाता है, मायूसी के अंधेरों के बाद उम्मीद दिलाता है, और खुशी के बाद गम भी लाता है। तो ना कोई फूल जाए खुशी के दिनों में और अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दे कि अब खुशी आ गई है, तो इतने हम आपे से बाहर हो जाते हैं, खूब अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, खूब नाचते हैं गाते हैं, उल्टे उल्टे हो जाते हैं। ओ, ये खुशियां परमानेंट नहीं है, दिनों के बाद रात है। और ना ही कोई इतना गम में पागल हो जाए कि अल्लाह से ही मायूस हो जाए। नहीं, क्यों मायूस होते हो? रात के बाद दिन भी आना है, ना दिन हमेशा ठहरता है ना रात हमेशा रहती है, बस ये सब इम्तिहान है। खुशी में अल्लाह देख रहा है मैंने क्या किया, गम में देख रहा है मैंने क्या किया। ये सब जो नजर आ रहा है ना, वो वैसा नहीं रहता, एक चीज जा रही है तो दूसरी उसके पीछे आ रही है। तो ये हमें बहुत बड़ा सबक दे रही है ये आयतें, बहुत बड़ा सबक, इनमें बहुत गौर करने की बात है। और इनको आप जितना अपने दिल के अंदर बिठाएंगे ना, आप देखें, ये आपको, आपके ईमान, आपका भरोसा, आपको एक अल्लाह के ऊपर तवक्कल करना सिखा देती है। ये वो आयतें हैं, वो चीजें जो हमें नामुमकिन लगती है ना, कि कैसे होगा, कभी ये तो कभी हो ही नहीं सकता, कैसे नहीं हो सकता, क्या अल्लाह रात और दिन नहीं लेकर आ रहा? और तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, और जिंदा को जो मुर्दा से निकाल सकता है और मुर्दा को जो जिंदा से निकालता है, क्या तुम ये नहीं देखते? हई को मुर्दा से कैसे निकालता है? आप ये देखें, मुर्दा है अंडा, उसमें से चूजा निकल आता है। बीज क्या है? मुर्दा है, उससे दरख्त निकल आता है। नुतफा क्या है? मुर्दा है ना, एक मर्द का नुतफा मुर्दा है, उससे क्या निकल आता है? एक जिंदा इंसान बन जाता है। और बाज मुफस्सिरीन ने जिंदा और मुर्दा से मुराद इस्लाम और कुफर लिया है। एक बंदा मोमिन है, उसके घर एक काफिर पैदा हो जाता है, और एक काफिर है, उसके घर एक मोमिन पैदा हो जाता है। काफिर से मोमिन का पैदा होना क्या है? मुर्दा से जिंदा का पैदा हो जाना। सुभान अल्लाह। और जिंदा और मुर्दा को बाज उलमा ने आलिम और जाहिल भी लिया है। तू निकालता है जिंदा को, यानी आलिम, मुर्दा से निकल आते हैं। कई कई जाहिल पेरेंट्स होते हैं, बिल्कुल अक्ल समझ नहीं है, इनका कुछ पता नहीं, उनसे आलिम पैदा हो जाते हैं। और तो खुरिजुल मय्यिता मिनल हई, और मुर्दा को यानी जाहिलों को जिंदों से, बड़े बड़े आलिम होते हैं और उनकी औलादें ऐसी बिल्कुल जहालत की उनके अंदर होती है, तो ऐसा भी होता है। और मुर्दा को जिंदा से, वैसे ही आप क्या देखें कि इंसान जिंदा है उसे मुर्दा हो जाता है वो, या मुर्दा बच्चा भी पैदा हो जाता है। तो हर जिंदगी मौत की तरफ बढ़ रही है और हर मौत से जिंदगी निकल रही है, सुभान अल्लाह। जिंदा जिस्म में कैसे मौत सराइयत कर जाती है? आपने कभी सोचा कि हमारी स्किन जो है कट जाती है, उसके ऊपर नई स्किन, जिंदा स्किन आ जाती है? हमारे डेड सेल्स, रोज सेल्स डेड होते हैं और उनकी जगह जिंदा सेल्स बनते हैं, मुसलसल ये हो रहा है। तो अल्लाह ताला का ये निजाम कैसा चल रहा है, अल्लाह ताला कैसे, कितनी कुदरत का मालिक है जो ऐसे चेंज ला रहा है। और फिर सिर्फ ये जिंदगी नहीं देता वो, इनको रिस्क, रोजी, सब चीजें इनको देना अल्लाह का काम है, उसके इख्तियार में है और उसकी जिम्मेदारी है। और इंसान ने इतनी जायदाद की, आज तक मुर्दा से जिंदा को पैदा नहीं कर सका। तो अल्लाह ताला ऐसी कुदरत वाला है। तो तुम भी ये ना समझोगे कोई चीज नहीं हो सकती, हर किस्म की बातियात, हर किस्म की ताकत अल्लाह के इख्तियार में। तो फिर हमें इज्जत चाहिए तो किसके पास जाएंगे, हमें कोई इख्तियार चाहिए तो किसके पास जाएंगे? हम गम में हैं, पिस रहे हैं, तो कौन हमारी रात को दिन में बदल सकता है? कौन हमारी जिंदगी के अंधेरों को रोशनी में बदल सकता? ये उसके इख्तियार में, उसके हाथ में है, किसी के दर पे ये नहीं मिलता, किसी कब्र में ये नहीं मिलता, किसी जगह पे ये नहीं मिलेगा। वतरज़ुकु मा तशाउ, और तू रिस्क देता है जिसको तू चाहता है, बेगैरी हिसाब, बगैर हिसाब के। रिस्क भी तेरे हाथ में, सारी भलाई तेरे हाथ में, कि लोगों से मुझे क्या मांगना और उनसे क्या डरना और उनके पीछे पीछे क्या मिन्नतें करना, सारा रिस्क तेरे, रिस्क के खजाने भी तेरे पास हैं। और देखे रिस्क में आप ना बिल्कुल लिमिटेड ना हो जाएं, कि हम सोचते हैं रिस्क मीन्स के पैसा, पैसा भी है रिस्क, वो भी जिसको चाहता है बगैर हिसाब के देता है। आप देखें अंगूठा छाप लोग हैं, उनके पास इतना पैसा है गिनने का भी नहीं उनको पता होता, लैंग्वेज भी नहीं कईयों को आती कि क्या लैंग्वेज है बोलनी उस मुल्क में, लेकिन इतना पैसा है तो जिसको मर्जी चाहे दे, उसके ऊपर खजाने खोल दे अपने रिस्क के। और बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले डिग्रियां ले लेके उनकी जूतियां चटक जाती हैं, लेकिन उनको कोई नौकरी नहीं मिलती। तो उसके पास है रिस्क के खजाने, जिसको चाहे बगैर हिसाब के दे। और इसमें फिर क्या और चीजें आ जाती हैं रिस्क में, मैंने आपको सूरह बकरा जब स्टार्ट हो रही थी तो बताया था रिस्क में जो भी अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें हैं ना वो सभी आ जाती हैं। सेहत भी रिस्क है आपका, अल्लाह ताला ने जो जिस्मानी कुव्वत दी हुई है वो भी रिस्क है, जहनी आपको जहन आपको अच्छा दिया हुआ है, जो आपको आपकी जहानत है वो भी रिस्क है, किसी को खूबसूरती दे दी है वो भी रिस्क है, सब रिस्क है, जिसको चाहे बगैर हिसाब किताब के दे दे। फिर हम कौन होते हैं ये सवाल करने वाले, उसके पास इतना क्यों है, पता नहीं उसको कैसे मिल गया, इनको तो मिलना ही नहीं चाहिए था। नहीं, अल्लाह के फैसले हैं ये, उसके फैसले हैं, हर फैसले के पीछे उसकी मशीयत है। तो फिर हम तो इतराज नहीं कर सकते ना, और ना ही हम किसी और के आगे हाथ फैलाएं। अल्लाह ने एक दर का भिखारी बना दिया और वो उसका दर है, सारे दर छोड़ दो, उसके पास आओ। तो जिसको जो भी चाहिए, जिस तरह का भी रिस्क चाहिए, वो बेहिसाब देने के लिए, तो उससे मांगो, उससे लो। उसके हाथ में अब इस आयत का थोड़ा सा शाने नजूल भी देख लेते हैं कि ये कब नाजिल हुई, किस वक्त में नाजिल हुई। इसका शाने नजूल के बारे में कहा जाता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया और आपने अपनी उम्मत से रोम और फारस की सल्तनतों का वादा किया, तो यहूदियों और मुनाफिकों ने कहा, कहां रोम और फारस के मुल्क और कहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह बात तो बड़ी दूर की है। और एक और रिवायत भी आती है कि जब जंगे अहज़ाब हुई थी ना, तो उससे पहले आपको पता है खंदक खोदी गई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक के निशान लगाए, हर 10-10 आदमियों की जमात को 40-40 हाथ, समझ लें 40 फुट तक खंदक खोदने का हुक्म दिया। तो उस वक्त कोई क्रेने या ये तो होती नहीं थी, तो बंदों ने खुद खोदनी थी, और भूख भी थी और खौफ भी था, और कितनी उस वक्त लोगों के ऊपर एक ऐसा सख्त वक्त था। तो उस वक्त खंदक खोदते खोदते एक ऐसी चट्टान आई जो किसी कुदाल से किसी फावड़े से नहीं टूटती थी। तब सहाबा कराम ने हज़रत सलमान फारसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और उन्होंने आकर आपको बताया कि ऐसे नहीं एक पत्थर टूट रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान के हाथ से कुदाल लेके चट्टान पर एक ज़र्ब लगाई, तो आपकी ज़र्ब से चिंगारियां उड़ी और अंधेरी रात में बिजली की तरह रोशनी पैदा हुई। आपने नारा तकबीर बुलंद किया, मुसलमानों ने भी बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रोशनी में मुझे हीरा के मोहल्लात नजर आ रहे हैं। फिर आपने दूसरी जरब लगाई, फरमाया इस रोशनी में मुझे रोम के मोहल्लात नजर आ रहे हैं। आपको पता है रोम फारस उस वक्त ना सुपर पावर थी, जिनको सुपर पावर सो कॉल्ड दुनिया में सुपर पावर कहते हैं, वैसे तो अल्लाह ही की पावर है जो सुपर पावर है, लेकिन दुनिया में ये टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। तो रोम को ना बड़ी एक बिग पावर थी। तो फिर तीसरी जरब लगाई, फरमाया इस रोशनी में मुझे सना के यमन के मोहल्लात नजर आते हैं, और मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके खबर दी है कि मेरी उम्मत इन सारे मुल्कों पे काबिज होगी और गालिब होगी, सो तुम्हें खुशखबरी हो। अब ये सुन के मुनाफिकीन जो थे वो तो हंसने लगे कि ये क्या बात हुई। उन्होंने कहा, तुमको अपने नबी पे हैरत नहीं होती, वो तुमसे झूठे वादे करता है, वो तुम्हें ये खबर दे रहा है कि वो यसरब से हीरा और मदाइन और कसरा, फैसर और कसरा है ना, उनके मोहल्लात को देख रहा है और वो मुल्क तुम्हारे लिए फतेह होंगे, हालांकि तुम मारे खौफ के खदके खोद रहे। तुम्हारा तो हाल ये है, भूखे हैं प्यासे हैं, और देखिए अब 10-10 लोगों को 40-40 हाथ खंदके खोदनी है, ना दिन का पता ना रात का पता, ना खाने का होश ना पीने का होश ना आराम मिल रहा है, और खाने पीने का कुछ था ही नहीं, पेटों पे पत्थर बांधे हुए थे। तो वो हंसने लगे ना, फिर देखो जरा तुम मारे खौफ के खंदके खोदने लगे हुए हो, ये तुम्हें उस उधर की भाई खुशखबरियां देने लगे हुए, और तुम में इतनी ताकत कहाँ है कि इन खंदकों से बाहर निकल के अपने दुश्मनों का मुकाबला ही कर सको, तो तुम्हें तो ये इतनी नहीं ताकत है, तो तुम कहाँ रोम और फारिस और इनके ख्वाब देखने लगे। तो तब ये आयत नाजिल हुई थी कि अल्लाह है जिसको चाहे बादशाहत दे दे, जिससे चाहे छीन ले। तो अब ये देख लें कि वाकई फिर उसके बाद क्या हुआ, मक्का फतह हो गया था, और अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये दुआ सिखाई है। हालांकि आप वैसे देखें तो इसमें मांगा कुछ नहीं गया, और करें ना इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया, सिर्फ ये कहा गया अल्लाह तेरे हाथ में, सब तेरा इख्तियार है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये दुआ सिखा दी, क्योंकि अब जो था वो इख्तदार शिफ्ट होने वाला था। नबुवत तो मिल गई, नबुवत मुंतकिल हो गई, ये उम्मत भी आपको देखे नई उम्मत ये बन गई, उम्मत मुस्लिमा को अब वो ओहदा मिल गया, किबला भी चेंज हो गया, बैतुल मकदस से बैतुल्लाह बन गया, इमामत उनसे इनको मिल गई। अब ये और एक इख्तदार मिलना जो कुफार से मुसलमानों की तरफ आ रहा है, तो अब ये दुआ सिखा दी गई कि अब ये दुआ मांगो। अल्लाह ताला अपने नबी को जो कुछ देना चाहता है ना, पहले उसके लिए अल्लाह ताला दुआ सिखा देते हैं। जैसे जब हिजरत का हुक्म आने वाला था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ सिखा दी अल्लाह ताला ने कि आप दुआ करें, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिदकिन व अखरिजनी मुखराजा सिदकिन व जालनी मिन लदुनका सुल्ताना नसीरा, ये सूरह इसरा में कि ये दुआ है नबी, ये दुआ किया करें आप। तो अब जब ये मक्का फतह होना था इसके बाद, तो अब ये दुआ किया करें, बादशाहत इज्जत जिल्लत तू अता फरमाता है, तू जब रात को दिन बना सकता है, दिन को रात बना सकता है, तो अल्लाह तू कब तक हमें इस गुरबत में, इस हिजरत के आलम में, इस फकर के आलम में रखेगा, हमें भी इस दुनिया का इक्तदार नसीब कर दे। तो जब मुर्दे को जिंदा बना सकता है, जिंदा को मुर्दा कर सकता है, मुर्दे में भी अल्लाह ही जान डालता है ना, तो अल्लाह हम जिंदों में भी जान डाल दे। तो बहुत स्ट्रांग है ये दुआ। और फिर उसके बाद वही हुआ जो हिस्ट्री ने देखा, मक्का फतह हुआ, मुसलमानों को इक्तदार मिला, तो अल्लाह ताला ने फिर वो कर दिखाया। ये बहुत प्यारी दुआ है इस लिहाज से। अब आप इसकी तिलावत सुने, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह।
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب।
अब ये आयात पढ़ के तो इंशाल्लाह ताला हमें अपनी सोच को स्ट्रेट करना है। क्या अगर कोई चीज हमसे चली गई है तो गम से हलकान ना हो, खुद को दीवाना ना करें, फिर आ जाइए। रात हमेशा नहीं रहती, हमेशा के लिए नहीं आती, फिर दिन आएगा। और मुल्क, इज्जत, रिज्क अल्लाह के हाथ में, हमने सिर्फ कोशिश करनी, गम नहीं लगाना, बाकी अल्लाह के हाथ में छोड़ देना, वो उसका काम है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इन्हें शात्री की आवाज में लगाएं इंशाल्लाह ताला, सारे सबक का इंशाल्लाह हम तिलावत सुनते हैं।
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب